Good evening and welcome to the Friday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karikram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, arthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Hamare saath khabron par चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन दे. उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडस्ट्रीज शेड ओवर 1%, सेंसेक्स सेटल्स एट 81,184, व्हाइल निफ्टी फॉल्स बिहाइंड 24,900 पॉइंट्स. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल कॉल्स टू एलिवेट इंडिया मेडिटेरेनियन रिलेशनशिप एंड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जंप टू ए न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ $683.99 बिलियन. And crude oil prices edge higher amid the release of US employment data.
और तीसरे सत्र में गिरावट, प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक फिसले. सेंसेक्स 81,184 पर हुआ बंद. निफ्टी 24,900 के स्तर से नीचे फिसला. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत भूमध्य सागरीय देशों के बीच संबंध को नए स्तर पर ले जाने का आह्वान किया. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 683 अरब 99 करोड़ डॉलर के नए स्तर पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका से आए रोजगार संबंधी आंकड़ों के मद्देनजर कच्चे तेल की कीमत उछली. घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला लगातार तीसरे सत्र में आज भी जारी रहा. अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की इस महीने होने वाली बैठक से पहले अनिश्चितताओं के मद्देनजर आज भी निवेशकों ने अच्छी खासी पूंजी निकासी की. कारोबार के दौरान निफ्टी 50 अंतर्दिवसीय कारोबार में 24,081 के न्यूनतम स्तर पर फिसला, जबकि सेंसेक्स भी 81,000 के स्तर से नीचे आ गया था. कारोबार बंद होते समय सेंसेक्स आखिरकार 1,017 अंक यानी 1.24% की गिरावट के साथ 81,184 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 276 अंक यानी 1.11% नुकसान के साथ 24,869 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा सा कमजोर रहा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1.5% की गिरावट हुई, जबकि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% नुकसान के साथ बंद हुआ.
India's equity benchmark indices extended their losing streak for the third straight session, following the uncertainties before the US Fed meeting this month. In the early morning deals, domestic indices opened downside with Nifty 50, touching an intraday low of 24,081 and Sensex logging an intraday low of 80,981. At close, Sensex declined by 1,017 points, 1.24%, to settle at 81,184, and Nifty 50 dropped 276 points, 1.1%, to close at 24,869. In the NSE, 149 companies hit their 52-week high, 25 hit their 52-week low. In the broader market, at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index declined by nearly 1.5%, and the small-cap index lost nearly 1%. In the Sensex pack, 24 out of 30 companies traded in the negative. The major laggards were SBI, which lost nearly 4%, 4.5%. ICICI Bank as well as NTPC shed more than 2% each, and HCL Tech fell nearly 2%. Conversely, the top gainers today were Bajaj Finance, which surged by more than 1%, Asian Paints and JSW Steel added nearly 1%, and Sun Pharma advanced less than 0.5%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all sectors traded in a loss. Top laggard, the telecommunications, which lost more than 3%. Oil and gas and energy lost more than 2% each. And BankEx shed nearly 2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as out of 4,034 companies, shares of 1,412 companies advanced, 2,534 companies declined, and 88 remained unchanged. Let's have a look at the rupee now.
रुपए पर ध्यान दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 2 पैसे मजबूत हुआ है, 83 रुपए 95 के पैसे के स्तर पर बंद हुआ। रुपया आज कारोबार के दौरान 83 रुपए 97 पैसे पर खुला। अंतरदिवसीय कारोबार के दौरान यह 83 रुपए 91 पैसे के स्तर तक मजबूत हुआ और आखिरकार 83 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाले सूचकांक पर नजर डालें तो समाचार तैयार किए जाने तक यह अंतरदिवसीय कारोबार में 101.03 पर चल रहा था। उदयन, बाजार में गिरावट का सिलसिला लगातार चल रहा है, आज भी बिकवाली रही, क्या प्रमुख कारक आज की बिकवाली के पीछे मान रहे आप?
मनोज, ये जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं उसके पीछे काफी हद तक वो डिटरमिन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अमरीकी शेयर बाजारों में काफी असर रहा है, स्पेशली जो उनके टेक स्टॉक्स है, स्पेशली एनवीडिया, जो कि 7 जो उनके टेक स्टॉक्स हैं, जो फैब 7 जो हैं, जो मार्केट्स को आगे लेके जा रही थी वहां पे, तो वहां पे ऐसा लगता है कि निवेशकों को लगा है। वैसे तो एनवीडिया का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, पर लोगों को उम्मीद हो रही थी एक एआई का हाइप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हाइप बना हुआ था, तो अब लोगों को लग रहा है कि ये और एक ट्रेंड है, ये कोई अजूबा नहीं है, तो वो एक चीज लोग रियलाइज कर रहे हैं। दूसरी बात, निवेशक ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि अमरीकी जो अर्थव्यवस्था में उसमें जो आर्थिक वृद्धि का दर है, ग्रोथ है, वो अब नरम हो रहा है, उसमें वो गति नहीं रहेगी, तो जो सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बात की जा रही थी वो अब उस मार्केट उसको डाइजेस्ट कर रहा है। तीसरी बात मनोज ये भी है कि लोग इंतजार करें, निवेशक, मैं तो अमेरिका के बारे में बात करूं क्योंकि वो सबसे नंबर वन इकोनॉमी है, भारत से तकरीबन आप लगा लीजिए 8 गुना बड़ा इकोनॉमी है, वर्ल्ड का नंबर वन है, तो वहां पे जो कुछ भी होता है पूरे विश्व में असर होता, तो ये इंतजार किया जा रहा है कि फेडरल रिजर्व, उनकी जो केंद्रीय बैंक है, वो उसमें कटौती कितने की होगी, क्योंकि ये जो कुछ इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, जो नब्स देखी गई है, वाइटल्स देखी गई है, उसमें कुछ जॉब्स रिपोर्ट आने वाला है, तो वो लोग वो देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का एक रिपोर्ट देखा गया, कुछ चीजें और देखी गई हैं, तो उससे ऐसे लग रहा है कि नरमी आ रही है, तो वो ये जो एक डेटा और आएगा अनएम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का जो आ जाने की उम्मीद है, तो उससे लोग आकलन करने की कोशिश करें कि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होगी इस महीने में लेटर, वो वहां पर कितने का ब्याज दर से घटाया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ब्याज दर बढ़ाई गई और वहां पे रखा गया था, तो वो अगर जैसे ब्याज दर घटता है तो वो इंडिकेट करता है, उन्होंने कहा था कि मुद्रास्फीति के ऊपर कंट्रोल अगर हो जाता है और हमें कंट्रोल होते नजर आता है तो तब हम करेंगे, तो उसको देख के अन्य केंद्रीय बैंक भी रिस्पॉन्ड करेंगे, उसी इसलिए सब की निगाहें वहां तक हैं। तो लास्ट पॉइंट यह है मनोज कि हमारे बाजारों में आईपीओस काफी सारे आ रहे हैं, तो क्योंकि ओवरबॉट हो गई थी, काफी शेयर्स खरीदे गए, इसलिए आप अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं, तो कई लोगों का मानना है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग की जा रही ताकि वो उन आईपीओस को सब्सक्राइब कर सकें। आप देखेंगे आज हाउसिंग फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं कुछ वो बेनिफिट कर रहे हैं कल और आज, तो ये माना जा रहा है कि वो रब ऑफ कर रहा है और वो आईपीओ की तरफ लोगों की नजर है।
उदयन, इफ यू जस्ट लुक एट द इक्विटी मार्केट टुडे, डीआईआई इज कवर्ड फॉर ऑल द सेलिंग प्रेशर, दे वर नेट बायर्स टू द ट्यून ऑफ 2,120 crore rupees, बट द एफआईआईज वर द नेट सेलर्स ओनली टू द ट्यून ऑफ 620 crore rupees. वन गेट्स द इम्प्रेशन दैट दिस वॉज अ मोर ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ वेयर रिटेल इन्वेस्टर्स were also participating in selling their portfolio. Why was that the case today? Because now we are seeing action on the part of non-institutional investors.
Yeah, Arjun, sometimes what happens is, as I mentioned, if there is an IPO primary market interest, and there is, then you would want to book some profits. It's worth pointing out, Arjun, that, you know, we have got so used to the market going up. If you look at where Nifty 50 was, say, on January 1st, 2nd, and you look at what it was yesterday also, or maybe today, you'll probably see that it's 20% up. That's not funny. I mean, which market makes appreciates by 20% in a matter of what? It's not even 9 months in a calendar year. So it's a sensational up move. And, you know, the interesting part, Arjun, is that I've read reports where foreign institutional investors they are in a bind. Because they are finding Indian markets to be pricey, but they don't want to get left out because this is the last good market, growing market standing. So it's a conundrum for institutional investors as well.
Udayan, since you mentioned the word conundrum, I'm sure our listeners would like to know that why the price to earnings multiples of certain key sectors like capital goods is 80 or 90. And if you look at small cap and mid cap, they're touching 50, at least above 30. Whereas large caps are in the space of 20 to 25. And therefore, the opportunity was in the large cap space. Do you see this sell-off today continuing next week also? Or do you see this only up until the Fed makes its announcements on the rate cut?
So there will be, I think it's reasonable to expect that till you get that information from Fed, which is some kind of a rate cut, it's all, you can call it almost certain that there's going to be 25 basis point rate cut, and the Federal Reserve Chairman has talked about it. So that will not be a surprise. Arjun, the point is, people are saying...
But that will motivate the hedge funds to... come back as net buyers in the market again with the same ferocity?
Even before that happens, one of the things which a lot of people in the West and also here in our country are trying to understand whether the Federal Reserve will actually do a 50 basis point. Now, the issue is 25 basis points everybody knows because it's been said. 50 basis points is what some people would like to see. But it is pretty unlikely, according to me and many, many others, simply because then it shows an alarm. One is where you are the Federal Reserve and most central banks have been giving guidance, Arjun, from 2020 onwards, that this is what we are going to do. And they're actually guiding the market. They're, you know, you're providing guidance. Before, they never used to do all this. Now, they are guiding it. So, a lot of people argue, and I buy that argument, that if you show a bigger rate cut, then you're showing alarm. That means you're not in control. Now, the question is, which of the two is going to happen? My understanding says, and it's a little bit of a, I'm sticking my neck out, I would say that it'll probably stick to 25 basis points, simply because it's not a some of the softening that people are thinking about, it's not wide based. It's just softening up, and it's not a really, really downturn kind of a thing across all the vitals are alarming. That's not what's happening. And in our country, yes, we probably will, there are one or two areas where we'll probably hold the fort as far as rates are concerned. But there's, coming back to the markets, I would imagine that till the Federal Reserve event gets over, you will find this nervousness one day here, one day there. Because NVIDIA is a brilliant example where they did everything right. But market was expecting their expectation to be beaten. Now, how unrealistic is
but
that?
But even that is under a price to earnings multiple of 70, which is also being seen as overvalued even by investors there.
Absolutely. Arjun, what happens with growth stocks is when you buy something, you're buying at a high price where you're punting on the fact that you're going to make a profit way into the future. The more distant it becomes, the profitability, less attractive a growth candidate like NVIDIA will become.
आपने बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर कह लें कि चर्चा को ले आए हैं उदयन. यहां पर हम जो हमारे अपने देश का पूंजी बाजार है वहां जो नए आईपीओ आ रहे हैं वहां आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, और आपने कहा कि जो पंटर यानी जो निवेश करने वाले हैं वो दूर और पास दोनों को खुर्दबीन और दूरबीन दोनों से निगाह से तौल कर फिर निवेश करते हैं। तो अभी हमने देखा है कुछ आईपीओ में अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक निवेश हुआ है। साथ ही श्रोताओं को ये बताइए कि नए जो आईपीओ आ रहे हैं वहां निवेश करते समय किन तथ्यों का ध्यान रखें जिससे उनको अपने निवेश पर पछताना ना पड़े और उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े।
देखिए मनुष्य, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, महत्वपूर्ण बात कही है। कुछ स्टडीज निकली हैं जहां पे ये पता चला है कि जो निवेशक हैं वो आईपीओ में निवेश करने के बाद ही लिस्टिंग होती है, मतलब महीने भर के अंदर वो आउट हो जाते हैं
जी।
जो निवेशक है वो वैसे ही एक रिटेल खुदरा जो निवेशक है उसके ऊपर एक लिमिट है जहां तक वो कर सकता है। तो आईपीओ के कुछ नियम है, वो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, एक दूसरे शेयर के वनस्पत ज्यादा है। कारण ये है कि दूसरे जो शेयर्स लिस्टेड हैं उसमें आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है
जी,
लिस्टेड कंपनी है आपके पास कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, आईपीओ में होता नहीं है
जी।
अगर आईपीओ की जो कंपनी है वो वही कर रही है जो जहां 6 कंपनी आपके पास है, तो बेहतर तो यही होगा कि आप वहां देखें। और आईपीओ में प्राइसिंग का हिसाब किताब रहता है, वहां पे तो मार्केट डिटरमाइंड प्राइस है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे देखने का फायदा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको सिर्फ स्पेक्यूलेटिव गेन करना है, आप तो निवेशक है
जी,
और ये तो ट्रेडिंग के दर्जे में ब्रैकेट में आ गई, तो ये कुछ बातें हम ख्याल में रखना होता है कि वो एक हायर रिस्क है। अगर आईपीओ का जो शेयर है वो एक नया आयाम है, एक नए एरिया में जा रहा है, मान लीजिए सस्टेनेबल एनर्जी में जा रहा है या कुछ ऐसी बात है जो है ही नहीं, और वो उस जिस सेक्टर में आप ग्रोथ देखते हैं, तब तो उसको अपने पोर्टफोलियो में लाने का फायदा है। नहीं तो आपके पास ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं, उसको लिस्ट होने दीजिए, लड़के जो जीतेगा उसी के साथ आप बोल लीजिएगा।
श्रोताओं, बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। आइए खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां के प्रमुख 5 बाजारों में आज हमने गिरावट देखी है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.23% घाटे में रहा, चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.81%, जापान का निकेई 225 0.73% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.12% घाटे के साथ बंद हुए। उधर भारत का गिफ्ट निफ्टी 0.03% के मामूली नुकसान में रहा। हांगकांग का हिंगसिंग टाइफून चेतावनी के मद्देनजर आज बंद रहा। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार पर ध्यान दें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक कमजोरी देखी जा रही थी। जर्मनी का डैक्स 0.44%, लंदन का फुटसी 100 0.19% और फ्रांस का कैक 40 0.15% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे।
मूविंग ऑन टू द यूएस स्टॉक मार्केट, 2 out of 3 यूएस स्टॉक्स रजिस्टर्ड अ डाउनफॉल यस्टरडे अहेड ऑफ द की जॉब्स डेटा रिलीज्ड टुडे। The Dow Jones Industrial Average slipped more than 0.5%, and the S&P 500 lost 0.3%, while the tech-heavy Nasdaq composite ended slightly higher with a gain of 0.25%. Let's have a look at the U.S. employment data now. U.S. employers added 1,42,000 last month. The Labor Department announced today one of the year's most closely watched economic news releases. The release comes as the U.S. Fed Reserve prepares to cut interest rates for the first time since March 2020. The reading for August was shy of the average forecast increase of 1,63,000 jobs by economic surveys. The headline unemployment rate also decreased from 4.3% to 4.2%, in line with the expectations. Udayan, the alarm was caused primarily by the jobs data for the month of July, which was 1,14,000. Now it's gone up to 1,42,000 for the month of August. How encouraged do you see the sentiment in the U.S. economy, and obviously the Fed deciding on the rate cut, which you have already answered on? But this is the backdrop where economists are saying that the U.S. is heading for a technical recession, at least till the end, till the end of 2024 and beginning of 2025. Do you see that view changing now?
Well, I don't think so, Arjun. What it's going to do is, Arjun, in the last couple of years, you would have seen the lexicon inflation being in the central bank speak across the world, and especially Federal Reserve. Now, it's interestingly, the word employment is coming in, and that is now probably going to start occupying center stage. So it is actually nicely setting up the stage for the soft landing that you're actually talking about, that small period of time when things are going to be softening up. And that's what probably indicators are indicating, although there are people who swear by the fact that there's nothing called soft landing. But that was in the past, Arjun. So, you know, right now what we see is Federal Reserve, for a change, their expectation is getting vindicated. They had a little bit of a egg in the face kind of a situation, you know, about 2 years back. But now things are looking in that direction.
Well, let's have a look at some more news. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that it is time to take the India-Mediterranean relationship to the next level. Speaking at the first Confederation of India Industry India-Mediterranean Business Conclave 2024 held in New Delhi, Goyal emphasized to facilitate people-to-people connect to further promote engagement between India and the Mediterranean region. He also expressed gratitude to the region for providing passage for over 80% of global trade. The Union Minister pointed out that India has huge opportunities for tourism.
Tourism have huge potential. Taking this message to other countries and inviting them to be a part of this initiative, whether in India or whether CII chooses to do it in different parts of the world, of the region, of Mediterranean region and India, is something that will evolve in the next few months and years.
In more news, highlighting the strong and resilient macroeconomic conditions of the country, he said that India has huge potential as it is among the fastest growing economy and aims to become the third largest economy by the next 5 years or even before by leveraging the strengths of its aspirational young Indian population that would drive economic growth of the nation.
Our effort to provide access to companies around the world and Indian companies to other countries in the world through deeper engagements, free trade agreements, economic partnerships. So we have a great story on our manufacturing side. Telecom is another area where through submarine cables we can look at greater engagement. Our effort to promote global agri-value chains can also support the initiatives between the Mediterranean countries and India.
यहां पर उदयन हम आपका ध्यान भूमध्य सागरीय देश और भारत के बीच संबंधों पर ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि क्या क्या संभावनाएं बनती हैं हमारे उनके बीच में आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए.
मनोज, बहुत जबरदस्त संभावनाएं हैं. जितने हमारे जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जो हमारा एक मिडिल ईस्ट के थ्रू से कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो पूरे अरब क्षेत्र से निकलेगा और सीधे इसराइल के हाइफा पोर्ट होते हुए जाएगी, ये मल्टी मॉडल है. तो ये अगले 20-30 साल में यूरोप या हमारे यहाँ पे जो उत्पादन हो रही है, क्रिएशन हो रही है और यूरोपीय बाजार को में जो जोड़ने की बात की जा रही है. कई लोगों को शायद मालूम भी नहीं हो, इराक में एक कॉरिडोर बन रहा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है. तो हर देश जो है वो कॉरिडोर बना रहे हैं. चीन ऐसे ऑलरेडी फंक्शनल 2 या 3 कॉरिडोर हैं उनके पास, और उस कई जगह में अजरबैजान के थ्रू से एक कॉरिडोर निकल रहा है. तो ये अलग अलग कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, मतलब गलियारे बनाए जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय
जी.
और उसमें क्या होगा कि अब ये जो फर्स्ट यूरोप का जो पहला जो हिस्सा जहां पे जाके पहुंचेगा वो आपका यूनान और इटली होंगे. तो वहां से जहां से भी आप निकलेंगे, और इसलिए वहां पे जो भूमध्य सागर के इलाका है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. क्योंकि तकरीबन मनोज, जो भी आप जीडीपी का फिगर लगाएं, इकोनॉमी का साइज लगाएं, इंटरनेशनल मतलब अगर एक्सपोर्ट्स जो हैं, तकरीबन इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से तकरीबन 20-25% वहां तक बात आगे जाने की बात होगी. उसके बगैर आप वो टारगेट आप रीच ही नहीं कर सकते जो जिनके बारे में बातचीत हो रही है.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 2 अरब डॉलर से अधिक की बढ़त लेकर 683 अरब 90 करोड़ डॉलर की अधिक होकर नई ऊंचाई पर पहुंच गया, यानी नया कीर्तिमान विदेशी मुद्रा भंडार का बना है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भंडार का एक प्रमुख हिस्सा जो हुआ करती हैं, 1 अरब 48 करोड़ डॉलर बढ़कर 599 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गई हैं। उधर देश का स्वर्ण भंडार 86 करोड़ 20 लाख डॉलर से अधिक की बढ़त लेकर 61 अरब 86 करोड़ डॉलर से ऊपर हो गया है। आलोच्य अवधि में एसडीआर 90 लाख डॉलर बढ़कर 18 अरब 47 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे मजबूती देने में क्या योगदान इसे हम माने नई वृद्धि का, नई ऊंचाई का?
ये अगर हेल्थ इंडिकेटर देखा जाए, कई बार आप वजन लेते हैं, बीपी चेक करते हैं, तो ये एक इनकरेजिंग इंडिकेटर है। इससे इकोनॉमी की हेल्थ जो है, अर्थव्यवस्था की हेल्थ को आप टिक मार्क, पॉजिटिव टिक मार्क होते
हैं। जी।
Well, let's have a look at the crude oil market. Oil prices edged higher today as investors awaited the U.S. employment data, but was on track for a heavy weekly loss as demand concerns offset a delay to supply increases by OPEC plus producers. In the global crude market, Brent crude was trading 0.77% up at $73.25 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate was also trading nearly 1% up at $69.77 per barrel when reports last came in. Very briefly, how would you tie consumption globally, or for that matter in the U.S., in the backdrop of inflation, but with the U.S. GDP in July going up to 3%, do you see oil prices go up as a result of that because demand is likely to go up? Or what is your take on oil prices suddenly spiking now?
As they call Arjun the joker in the pack, but there's a big joker at that card, which is China, Arjun. It's not so much U.S. You know, in U.S., people live at far-flung areas, so you need vehicles, and it's a very important, fuel is a very important part. Right now, their issue is not so much of inflation, it's affordability, home prices and fuel. So when fuel prices go up, they get hit, you know. So they are not going to get hit so much, because they also have their own fracking and other energy-related industry.
But Sinopec is saying that China, the demand for oil has actually come down, and
that is exactly
the Fed is targeting home buyers.
That is exactly what the challenge is going to be for the oil producers. When are they going to start producing more? Because they're probably going to delay it, which I think you've read in the news, and they're probably going to see how China's shaping up. It's still not encouraging. It's still not got that mojo back, the growth mojo back, the kind of mojo that we associate with China, and therefore that is going to be a very important determinant. Of course, if there is a conflict somewhere in some of these oil producing areas, and there are plenty of them, then that could also have a bearing on prices.
आइए नजर डालें सोने और चांदी की स्तर पर। सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.6% घटकर 72,150 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 0.16% बढ़कर 85,030 रूपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। एमसीएक्स पर सोना और चांदी के दाम थोड़े से ऊपर चल रहे थे। अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.4% के आसपास बढ़त में था, 71,889 रूपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी 0.03% यानी मामूली कमी के साथ 84,933 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रही थी। यहां पर उद्यन बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में, अधिकांश केंद्रीय बैंक में सोने की खरीद का रुझान देखा जा रहा, और भारतीय बाजार में भी सोने के स्तर को हमने काफी ऊंचे स्तर पर देखा। आने वाले दिनों में क्या आसार लग रहे हैं?
देखिए, ये तो कभी कभी खरीदारी होती है, बाकी जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है और रिटेल बाइंग, आप और हम जैसे लोग हैं, वो काफी हद तक डिटरमिन करेंगे,
यानी आने वाला समय तय करेगा कि सोने का भाव क्या रहेगा। यहां पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. The domestic benchmark indices shed over 1%. Sensex settles at 81,184, while Nifty falls behind to close at 24,900. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls to elevate the India-Mediterranean relationship. India's foreign exchange reserves jumped to a new all-time high of $683.99 billion and crude oil prices edge higher amid the release of US employment data. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.